ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. రాజ్యో కే ప్రథమ సత్ర మే ఆప్ సభీ భాయ్ బహనో కా బహుత్ స్వాగత్ హై, హార్దిక్ స్వాగత్ హై. హమారే బీచ్ మే పరమ శ్రద్ధేయ రాజయోగిని బ్రహ్మా కుమారీ శిలు దీదీ పధారే హై పహలా సత్ర కరానే కే లియే. తో దీదీ జీ కా హమ్ तहे दिल से स्वागत करते हैं. सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे दीदी का. और मैं नीतू बहन से निवेदन करती हूँ कि पुष्प दे करके दीदी का स्वागत करें. तो दीदी जी का परिचय आप सबको मैं अवश्य कराना चाहूंगी. दीदी जी का जन्म 1948 में मुंबई में हुआ. बचपन से ही आपको आध्यात्मिक अनुभव के प्रति गहरी रुचि रही. आप 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई. अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का भी अभ्यास करते रहे, जिससे आपने स्वयं में एकाग्रता तथा कुशाग्र बुद्धि का गहन अनुभव किया. मुंबई विश्वविद्यालय से 1969 में विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में आप मानवता की ईश्वरीय सेवा अर्थ इस संस्था में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए. 1970 से 1974 तक आपने बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की. 1974 से 1976 तक कुछ अफ्रीकी देशों तथा मॉरिशस में आपने ईश्वरीय सेवा कर अनेक राज्योग सेवा केंद्रों की स्थापना की. 1976 से आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से रहकर राज्योग शिविरों का सकुशल संचालन कर रही है, जिसके अंतर्गत अभी भी प्रतिवर्ष माउंट आबू में हजारों शिक्षाविदों, न्यायविदों, चिकित्सक, विज्ञानी, व्यापारियों तथा समाज के अन्य व्यवसायों के व्यक्ति आकर लाभान्वित हो रहे हैं. आबू पर्वत तथा अन्य स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों, महासम्मेलनों में आप एक कुशल प्रवक्ता के रूप में अपने वक्तव्य रखती हैं. हिंदी, अंग्रेजी तथा सिंधी, इन तीनों भाषाओं में आप धारा प्रवाह रूप से बोलती हैं, साथ साथ इन तीनों भाषाओं का सफल अनुवादन भी करती हैं. आपने पांचों ही महाद्वीपों में 70 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और विश्व की अनेकानेक आत्माओं में आध्यात्मिक क्रांति के बीज बोकर उनके जीवन में सच्ची सुख शांति की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया है. आप प्रवचनों के माध्यम से सकारात्मक सोचने की कला, तनाव मुक्त जीवन तथा राजयोग द्वारा जीवन मूल्य का विकास आदि विषयों पर प्रकाश डालते हैं. आपकी स्पष्ट, तार्किक तथा आत्मिक स्नेह एवं आध्यात्म रसपूर्ण वाणी की बढ़ती हुई चाहना को लेकर राजयोग प्रवचन माला, राजयोग कमेंट्री तथा कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचनों की ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है. 1993 में टीवी के माध्यम से संस्था की ओर से मूल्यों के प्रति जन जागृति लाने के भगीरथ कार्य की शुरुआत करने वाली आप सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी बहन हैं. ताली बजा सकते हैं दीदी के लिए. आपके प्रवचन जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था तथा संस्कार चैनलों पर कई वर्षों तक लगातार प्रसारित होते रहे. वर्तमान समय आपके विविध कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्था के अपने टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड पर नियमित रूप से आते रहते. कितने ही यहाँ पर बैठे हुए पीस ऑफ माइंड चैनल देखते हैं? अच्छा, तो दीदी को देखा है सबने. तो ऐसी हमारी त्याग तपस्वी, मूर्त निर्माण, मृदुभाषी महान विभूति आज हमारे बीच में है. दीदी जी आपके लिए कहना चाहेंगे, आपकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, आपकी सोच में आत्मविश्वास की महके आपके इरादों में हौसलों की मिठास से आपके इरादों में हौसलों की मिठास से आपकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, आपकी पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है, आपकी पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है। ऐसे हमारी आदरणीय शिलो दीदी जी से अभी हम जो हमारा पहला सत्र है राजयोग का स्वयं की पहचान अभी हम सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। मैं निवेदन करूंगी, आप सभी भी हमारे बाद रिपीट करेंगे, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी रिसर्च स्कॉलर्स तथा उनके साथी भाई बहने, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस मुख्यालय में पहुंचे हैं, तो मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए ताली जरूर बजाएं। बहुत सुंदर विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च। तो मैं सोच रही थी, कैन इट ऑल्सो बी अ रिवर्स ऑफ इट, रिसर्च इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि रिसर्च के आप विद्यार्थी रहे हैं, कई आप प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं, बहुत रिसर्च की होगी, लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी में भी रिसर्च की है? या हम दूसरे शब्दों में कहें कि स्पिरिचुअलिटी में क्या रिसर्च करना, वो तो सत्य है। सत्य में रिसर्च क्या करना होता है? ट्रुथ इज विजिबल, ट्रुथ इज ट्रुथ, यू कांट आर्ग्यू अबाउट इट। तो स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च इज राइट, न कि रिसर्च इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि रिसर्च में अगर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं डालते हैं तो कई गलत तथ्य भी निकल सकते हैं। तो क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी शब्द ये स्पिरिट से निकला है, अर्थात डीलिंग विद द सेल्फ, डीलिंग विद द सोल, क्योंकि सेल्फ क्या है? इसलिए किसी ने ठीक कहा है, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। अनलेस यू रियलाइज योर सेल्फ, यू कैनॉट रियलाइज गॉड। So you don't have to do research in it, but you have to realize it. अब realize करने के लिए उसका पूरा ज्ञान चाहिए, जिसको हम आत्मज्ञान कहेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान से आत्मचिंतन होता है। बिना ज्ञान के चिंतन भी कैसे करेंगे? रिसर्च भी आप तब कर सकेंगे जब आपको पास उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, तभी तो और रिसर्च करते जाएंगे। इसी प्रकार आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है, और आत्मज्ञान से आत्मचिंतन होता है, आत्मचिंतन से आत्मनिरीक्षण होता है। अंदर जाकर कहा जाता है ना, अंदर जाओ, अंदर देखो, अंदर में आपको सब कुछ मिलेगा, बाहर कुछ भी नहीं है। विज्ञान तो केवल बाहर की बातें बताएगा, जिसको विज्ञान कहता है सीइंग इज बिलीविंग। इफ यू कांट सी इट, इफ यू कांट एक्सपेरिमेंट विथ इट, you cannot measure it, then you cannot believe it. You know, science ye kahega. So seeing is believing. Spirituality is ka opposite hai. First believe, because you can't see the soul. आत्मा दिखाई नहीं देती है. कई कहते हैं आत्मा दिखाई नहीं देती तो हम उस पर विश्वास कैसे करें, दिखाई दे तो विश्वास करें. लेकिन दुनिया में कितनी चीजें हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं पर अनुभव जरूर कर सकते हैं. इसलिए यू हैव टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट, रियलाइज इट फर्स्ट. पर उसके लिए उसका निरीक्षण करना होगा, अंदर जाकर स्वयं को पहचान कर. और आत्म निरीक्षण से फिर आत्म विश्लेषण होता है. यू कैन एनालाइज इट लेटर ऑन. विश्लेषण अर्थात वास्तव में क्या हूं, निरीक्षण जो ओरिजिनल स्टेज है मेरी, उसकी भेंट में मैं अभी कहां हूं. तो विश्लेषण करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. और आत्म विश्लेषण के बाद आत्म संयम होता है, कंट्रोलिंग योर सेल्फ. और आत्म संयम के बाद आत्म बोध होता है, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ. और ये सब सूक्ष्म है, इट्स नॉट फिजिकल. जो ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये रिसर्च करके आपको बताएं. और जहां आत्म अनुभव होता है, आत्म अनुभव करने के बाद आत्म परिवर्तन होता है. जो आज हम चाहते हैं कि मैं जीवन में, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मैं उसको बदलना चाहता हूं. I want to change myself. अब जैसे आपने अभी प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजेस की, एक दृढ़ता चाहिए, एक निश्चय चाहिए कि मुझे ये करना ही है. और वो भी अंदर से आएगा, बाहर से नहीं. बाहर से तो एक्सरसाइज करेंगे फिजिकल, लेकिन आत्म संयम के बाद आत्म बोध हो कि मैं वास्तव में कौन हूं. एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? फॉर हेल्थ. इट प्रूव्स कि हमारा वास्तव में शरीर तंदुरुस्त है, लेकिन हमने गलत खान पान, व्यायाम नहीं करने से, ये सब जो मैंने गलतियां की है उसके कारण ये हुआ है. तो जब आत्मबोध होता है तो महसूस होता है कि जो हम चाहते हैं जीवन में, सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, खुशी मिले, वो अपने आप प्राप्त होगा. और जहां आत्म परिवर्तन हुआ तो ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन हो सकता है. हम चाहते दुनिया में शांति आए, और कई समझते दुनिया में शांति होगी तब हमको शांति होगी. इट इज लाइक ट्राइंग टू कैच योर नोज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग राउंड एंड देन ट्राइंग टू कैच योर नोज. नहीं होगा. बूंद बूंद से सागर बनता है, वो सागर में बूंदे समाई हुई है. तो पहले स्वयं में बोध हो, स्वयं में परिवर्तन हो, तब विश्व में परिवर्तन होगा. और हम सचमुच ये सुंदर संसार जो था वो फिर से ला सकेंगे. सो वी हैव टू गो टू द रूट्स. और वो रूट क्या है? एक्सप्लोरिंग द सेल्फ. अंदर जाकर देखना, झांकना, पहचानना और अनुभव करना. और उसके लिए राजयोग एक बहुत सुंदर विधि है. तो क्या है राजयोग? अगर हम योग शब्द की ही केवल परिभाषा लें तो ये लंबा चौड़ा शब्द नहीं है, लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है योग. योग शब्द युज शब्द से निकला है. संस्कृत में युज शब्द आता है. जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किसी भी प्रकार के जोड़ को हम योग कहते हैं। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, योग वियोग, और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, दूर जाना, सेपरेशन। तो उसकी कंट्रास्ट में योग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, एक होना। हम ये योग शब्द कितनी बातों में इस्तेमाल करते हैं, करते हैं ना। सहयोग, वो भी एक, उसमें भी योग आता है, मिल करके काम करना, ये सहयोग है। संयोग, वो भी योग है। हम कोई बात सोचते हैं और वो बात हो जाती है, हम कहते हैं क्या संयोग था, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तो वो भी योग है। हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी ये करने लिए, तो उसके लिए भी प्रयोग, ये भी योग है। तो जहां इस ये सब बातें माना वहां मिलन है, वो योग है। इसलिए योग शब्द को समझना मुश्किल नहीं है। फिजिकली भी हम योग देखते हैं। अब हमको हमारे मकान में, इस हॉल में लाइट है, पंखा है, ये सब माइक है, बहुत सुंदर चल रहा है, अचानक बंद हो जाए, सब ऑफ, तब कहेंगे क्या बात है, पावर हाउस से कहीं बिजली तो नहीं आ रही, मना रुक तो नहीं गई, बिजली है। फिर कहेंगे भाई दूसरे हॉल में देखो वहां बिजली है, तो कहेंगे वहां तो है, तो यहां क्यों नहीं है, तो सब जगह होनी चाहिए, अचानक यहां कैसे चली गई। तो फिर हम क्या करेंगे, इस हॉल क्या का जो फ्यूज है मीटर, उसमें देखेंगे कि कहीं वहां फ्यूज तो नहीं उड़ गया। और जब पता चलता है कि फ्यूज उड़ गया है, तो फिर हम उसको ज्वाइन करेंगे, फिर पावर हाउस से लाइट आएगी, यहां भी आएगी, तो वो भी एक यूनियन है। पर उसके लिए हमको जो तार होती है उसका ऊपर जो रबर है वो हटाना पड़ता है, कॉपर टू कॉपर जोड़ना पड़ता है, तब करंट पास होगी। तो योग होने लिए देयर शुड बी सम सिमिलैरिटी, तब ट्रांजैक्शन होगा। फिर दूसरा एक तो ये फिजिकल योग हो गया, कई प्रकार से हम कह सकते हैं, हम रेडियो ऑन करते हैं, हमें कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो वही मीटर बैंड, वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ, जहां से वो रेडियो स्टेशन की आवाज आ रही है, वो सुई हम अपने रेडियो पर सेट करेंगे, तब हम वो आवाज से हजारों मील की दूरी पर हो वो हम अपने रेडियो सेट पर सुन सकेंगे। अब ये भी एक योग है। तो एक है फिजिकल, चाहे वो फिजिकल एनर्जी हो, चाहे फिजिकल थिंग्स हो, चीजें हो। दूसरी ओर है मेंटल माइंड, जिसको हम याद करते हैं, उसके साथ भी योग होता है। और हम कहते भी हैं, आज समझो हम किसी को बहुत याद करते हैं, और मान लो जैसे याद कर रहे थे उसके बारे में बातें चल रही थी उस व्यक्ति के बारे में, और उसी वक्त वो व्यक्ति पहुंच जाता है, हम बातें कर रहे थे उनके बारे में, वो पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे अरे क्या योग था मेरा, अभी अभी हम आपका ही नाम ले रहे थे, आपको ही याद कर रहे थे और आप आ गए, क्या योग था। अब ये भी योग है, मन से मन मिला और वो खींचा हुआ चला आया, तो ये भी योग है। लेकिन जो थर्ड लेवल है वो है स्पिरिचुअल टाइप ऑफ योग, विच इज द कम्युनिकेशन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब ये आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो, क्योंकि यही सबसे ऊंचा मिलन है। अब इसके लिए पहले हमें फिजिकल रूप को समझना होगा। तो जैसे बताया ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो, जॉइनिंग ऑफ टू वायर्स एंड एडिंग शुगर टू मिल्क। अब जैसे आपने शुगर मिक्स किया मिल्क में, दूध में, और घुमाया, तो जो गुण है शुगर का वो मिठास उस दूध में आ जाएगा और दूध मीठा हो जाएगा। तो हम कहेंगे मीठा दूध है, इसमें इसमें शक्कर पड़ी हुई है। तो शक्कर और दूध को मिलाया तो मीठा दूध हो गया। तो जिससे मिलन होता है उसका गुण आ जाता है। अब इसको भी हम योग कहेंगे। अब मन से भी हम जो सोचते हैं वैसा ही अनुभव होता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव करेंगे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अब आप एक बहुत दुखद बातें सोचते हैं, दुखद है, ट्रैजिक इंसिडेंट्स कई होते हैं जीवन में। अब आप उसका उसको सोच रहे हैं, तुरंत आप मन आपका मन उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। आप खुशी की बातें सोचते हैं तो तुरंत आपका चेहरा खिल जाएगा और आप मुस्कुरा देंगे। कई बार हम ऐसे ही मुस्कुरा देते हैं तो क्या कोई कहेंगे ना क्या बात है, क्या सोच रहे थे, क्योंकि चेहरा दिखाई देता है। और कई बार बहुत उदास है तो हम फिर भी पूछेंगे क्या सोच रहे हो, क्यों इतने उदास हो। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपका चेहरा आपके मन का दर्पण है, वो दिखाई देता है आपके चेहरे से। सो एज आर योर थॉट्स एंड मेमोरीज सो इज योर मेंटल स्टेज। अब हम इसको हम स्पिरिचुअल लेवल में देखेंगे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिस मिलन से हम उस परमात्मा से जो उनके गुण हैं उनको हम अनुभव करते हैं। जैसे पावर हाउस से हम एनर्जी लेकर के अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा वो पावर हाउस है। वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। और उससे संबंध जोड़ने से आत्मा स्वयं में वो शांति, प्रेम, खुशी, आनंद अनुभव कर सकती है। तो इसीलिए टू कंसिडर वन सेल्फ टू बी अ सोल एंड कम्युनिकेट विद द सुप्रीम इज कॉल्ड राजयोग। तो योगी तो हम सभी हैं, क्योंकि जिसके विषय में सोचते उसके उसके साथ योग है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, हम सोचते हैं तो जैसे उसमें लय हो जाते, उसमें जैसे विलीन हो गए, वही सोच चलता, वही चेहरा बन जाता है, वही स्थिति बन जाती है। लेकिन जब हमारा मन परमात्मा में लग जाता है तो वो स्थिति कैसी होगी आप सोच सकते हैं। इसलिए इसको राजयोग कहते हैं, क्योंकि सभी योगों का राजा है। हम योगी तो हैं लेकिन उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जिसके लिए कहा गया ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनसे मन की तार जुड़ जाती है, उसको कहते हैं राजयोग। और गीता में ये बहुत सुंदर रूप से वर्णित है। हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगा, कीप योर माइंड इन मी, मन मना भव। इस मन को मेरे में लगाओ, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। इस राजयोग से, मन को मेरे में लगाने से तुम्हारे जन्म जन्म के पाप दग्ध होंगे। तो ये क्या है राजयोग? यही स्पिरिचुअल योग है। और यही स्पिरिचुअलिटी रिसर्च में बहुत मदद करती है। आप जब रिसर्च करते हैं तो कितनी साइलेंस में जाना पड़ता है, कितनी एकाग्रता लानी पड़ती है। ऐसे ही नहीं रिसर्च होता है, ऐसे ही नहीं आपको सब अनुभव होगा। यू हैव टू गो इन टू डीप साइलेंस। और उस साइलेंस में अगर मेडिटेशन सही रूप में हो, ईश्वर से लगन हो, तो इतनी सुंदर अनुभूति आप कर सकेंगे। इसलिए कहा स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च। तो हम देखें कि इसको राजयोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इससे हम इंद्रियों के राजा बनते हैं। हमको दूसरे पर राज्य नहीं करना है, खुद पर राज्य करना है, खुद का राजा बनना है, अपनी इंद्रियों का राजा बनना है। हम इंद्रियों को जैसे चलाना चाहें वैसे चलाएं, क्योंकि ये इंद्रियां ये पांच घोड़े की तरह है, पंच कर्म इंद्रियां। तो मैं आत्मा राजा बनकर के इन इंद्रियों को चलाऊं, ये राजयोग से संभव है। फिर मन का भी हम राजा बन सकते हैं, मैं मन में जो सोचना चाहूं वो ही सोचूं, जो नहीं सोचना चाहूं वो नहीं सोचूं। फिर उससे क्या होगा, अगर इंद्रियों का राजा बन सकेंगे, मन का राजा बन सकेंगे, तो अपने ऊपर आपने कंट्रोल किया, खुद को मैनेज किया, तो फिर आप सबका दिल भी जीत सकते हैं। किसको हराना नहीं है, किसी को हरा कर हम जीत लेते वो कोई जीत नहीं है, लेकिन सबको जीतना है। बिग डिफरेंस बिटवीन उनको हराना है, हरा कर जीतना, और उनको जीतना माना उनका दिल जीतना। और दिल अगर सबका जीत लिया तो फिर तो आप सारे विश्व को भी जीत सकते हो, सारे विश्व को जीत सकते हो। कोई भी व्यक्ति बाहुबल से यानी युद्ध के बल से, हथियारों के बल से, हिंसा के बल से, क्रोध के बल से दूसरे को नहीं जीत सकता है, लेकिन प्रेम से अवश्य जीत सकता है और उससे सारे विश्व को भी जीत सकता है। जिसको ही कहा कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, मानव देव बने। दुनिया में आपने बहुत यूनिवर्सिटीज देखी होगी, लेकिन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जिससे मानव महामानव बन जाए, मनुष्य देव बन जाए, ये यूनिवर्सिटी है। इसलिए हम इसको कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जो स्वयं परमात्मा ने यह विश्वविद्यालय रचा है, तो क्या है वास्तव में राजयोग? इट इज अ लिंक ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल एंड इट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगास। क्योंकि योग के भी कई रूप बताते हैं, कई रूप, उसके डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इससे सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम के साथ संबंध है। और जो विधि है, जो तरीका है, जो मेथड है उस मिलन के लिए, वो भी सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, इट्स अ हाईएस्ट मेथड। फिर इससे जो प्राप्ति है वो भी सबसे ऊंची है। क्या प्राप्ति है? दुनिया में कई लोग से मिलते हैं, हम उनको देखते हैं और बड़े उदास चेहरा ये वो, जबकि उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति वैभव मान शान इज्जत सब कुछ है। तो हम उनसे पूछते हैं आखिर क्यों इतने उदास हो, तो कहते हैं बस बहन जी शांति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ है, शांति नहीं है। तो सबसे ऊंची प्राप्ति क्या हो गई? सब कुछ है पर शांति नहीं है, तो जैसे जीवन नीरस है। पर अगर शांति हो तो और चीजें इतनी न भी हो तो भी जीवन कितना ऊंचा है। जीवन में संतोष हो भले प्राप्तियां इतनी न हो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो उस सुखी व्यक्ति से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्राप्तियां भी सबसे ऊंची। अब ऐसे राजयोग को हम कैसे अनुभव करें? सो राजयोगा एनेबल्स अस टू क्रिएट न्यू एटीट्यूड्स, क्योंकि मन से ही परिवर्तन करना है, ये बाह्य परिवर्तन की बात नहीं है. राजयोगा एनेबल्स अस टू क्रिएट न्यू एटीट्यूड्स एंड रेस्पॉन्सेज इन लाइफ टू लाइफ. सो इट्स अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेल्फ एंड गॉड रियलाइजेशन. और गीता के अंदर उसको योग शास्त्र ही कहते हैं. गीता को हर चैप्टर, हर अध्याय गीता का अलग अलग योग से जुड़ा हुआ है और ये सब योग राजयोग में सम्मिलित हैं. ज्ञान योग, ज्ञान के आधार पर ये योग है. आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, इस संसार चक्र का ज्ञान, ये सब इसको हम ज्ञान कहते हैं. इसलिए ज्ञान योग है. फिर सहज योग है. इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है. हमें शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है. सभी कर भी नहीं सकते हैं शीर्षासन, सिर नीचे पैर ऊपर. कहीं स्पॉन्डिलाइटिस ना हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाए. हाँ, ऐसे भी होता है. राइट गाइडेंस चाहिए. तो शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू बैलेंस ऑन हेड. बट वॉट यू नीड इज बैलेंस ऑफ हेड. ऑन के बदले ऑफ कर दो, ओ एफ. मन का संतुलन, शरीर सिर पर संतुलन जरूरत नहीं है. इसी प्रकार पद्मासन, पद्म जैसा हम आसन बना के बैठे जरूरत नहीं है. सभी नहीं कर सकते हैं. हाँ, जिनको अभ्यास है चलो कर सकते हैं, पर जिनको अभ्यास नहीं है और घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, मानो कुछ भी है, तो पद्मासन नहीं कर सकते. लेकिन पद्म जैसा जीवन तो बना सकते हैं. जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, तो हम भी अपना जीवन इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते, गृहस्थ में रहते, जिम्मेदारियां संभालते न्यारा रह सकते हैं. ये कला है, जीवन जीने की कला है. इसलिए ये सहज योग है. फिर ये बुद्धि योग है. मन और बुद्धि का संतुलन चाहिए इसमें. वो भी एक कला है, कैसे संतुलन रखते. जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पर चलता है और तभी भी गिर सकता है अगर ध्यान नहीं था तो. थोड़ा सा ऊपर नीचे खड्डा हुआ या कुछ भी है तो फिसल जाएगा या गिर जाएगा. और दूसरा व्यक्ति एक रस्सी पर चलता है तो भी गिरता नहीं है. क्या अंतर है दोनों में. जो धरती पर चलकर भी गिर गया उसका बैलेंस छूट गया, और जो रस्सी पर चला और गिरा नहीं, माना कितना बैलेंस होगा उसके जीवन में, उसके टांगों में भी. तो ये मन और बुद्धि का बैलेंस चाहिए. आज मन और बुद्धि का बैलेंस नहीं है. मन कुछ और सोचता है, फिर बुद्धि कुछ और निर्णय देती है, फिर मन बुद्धि को दबाता है और अंदर ही अंदर टेंशन, स्ट्रेस पैदा हो जाता है. संघर्ष चलता अंदर ही अंदर. हम कहते हैं दुनिया में, कहते हैं आत्महत्या, सुसाइड कोई करते हैं उसको आत्महत्या कहते हैं. हम कहते हैं वो आत्महत्या नहीं है, वो जीव हत्या है. आत्महत्या तो हम तब करते हैं जब अंदर ही अंदर संघर्ष करते हैं. मन और बुद्धि लड़ते हैं आपस में. कई बार हम गलत काम कर लेते हैं, फिर कहेंगे मन खाता है, गलत किया ना, पता है. इसका बहुत विस्तार है. लेकिन ये बुद्धि योग है. जब बुद्धि मन को अपने वश में करे और मन इंद्रियों को वश में करे. अभी उल्टा चल रहा है. इंद्रियां मन को वश में कर रही है. जहां इंद्रियां खींच के ले जाती वहीं मन चला जाता है. तो जीव रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर ले जाती है, खींचती है. और मन फिर बुद्धि को दबाता है. अगर वो सही निर्णय भी देगी ना बुद्धि, जिसको कहते अंतर आत्मा की आवाज, वो आती भी है ये गलत है, तो भी मन बुद्धि को दबा देता है क्योंकि इंद्रियों के वश है. और फिर कर्म इंद्रियां गलत काम कर लेती है. होना क्या चाहिए? कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। मन का काम सोचना है, बुद्धि का काम समझना है, फिर इंद्रियां थर्ड स्टेज है, कर्म थर्ड स्टेज है। लेकिन क्योंकि इंद्रियों के वश हो गया मन, तो तीसरे स्टेज से हम सेकंड, फर्स्ट और सेकंड तक आते। पहले कर लिया एक्सटेम्पो, गलत कर्म कर लिया, इसकी हत्या कर ली, फिर बुद्धि चली, अरे ये तो गलत किया है तो मर गया। फिर मन में सोचे अभी क्या करें, मर तो गया। उस समय नहीं सोचा गोली चलाने से, बंदूक चलाने से पहले, करने के बाद रियलाइज हुआ। रियलाइजेशन के बाद फिर मन चलता है क्या करें। जबकि होना चाहिए मन में अगर विचार आया भी पर बुद्धि उसको रोके, अंतरात्मा की आवाज उसको कहे गलत है, और वो गलत समझ करके उसको रोक, अपने इंद्रियों को रोके। अब वो नहीं होता, इसलिए जीवन में हम कितने गलत कर्म कर लेते हैं, फिर कितना भी पश्चाताप करो, अब वो पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कर्म तो हो ही गया, उसकी सजा तो मिलेगी, ये कर्म की गति है। इसीलिए बुद्धि योग बना सोच समझ कर करो, ये राजयोग हमें सिखाता है। फिर कर्म, देन कर्म योग। कर्म योग का मतलब ये नहीं कि कर्म से योग, कर्म योग का मतलब है कर्म करते परमात्मा से योग। हर वक्त हर कर्म परमात्मा से योग हो तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से वो शक्ति मिलती है श्रेष्ठ कर्म करने की। और जहां कर्म योग है वही सच्चा भक्ति योग है। भक्ति योग केवल कर्म कांड नहीं, पूजा पाठ आदि ये नहीं, भक्ति माना प्रेम, ईश्वर से सच्चा प्रेम। इसलिए हर कर्म में उसका प्रेम अनुभव हो। जैसे मीराबाई हर कर्म में वो कृष्ण को ही देखती थी, उसका भक्ति योग था, वही उसका कर्म योग था। और जहां ये सब है वहां संन्यास योग। संन्यास माना घर गृहस्थी का संन्यास नहीं, पर बुराइयों का संन्यास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका संन्यास। और जब ये सचमुच हम इनको जीत सके तब कहेंगे समत्व योग, योग ऑफ बैलेंस, बैलेंस इन लाइफ। और यही है जीवन जीने की कला। दुनिया में कलाएं बहुत है, लेकिन जीवन जीना भी एक कला हो तब हम कहेंगे ये सच्चा जीवन है। तो राजयोग से ये सब हमको अनुभूतियां होती है। जजमेंट पावर बढ़ती है, बिहेवियर बदलता है, पर्सनालिटी एनहेंस होती है, विल पावर मिलती है, शांति मिलती है, पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता आती है, संबंध सुधरते हैं, और साथ साथ परमानंद की अनुभूति होती है। तो जब हम ये महसूस करते हैं तो लगता है भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर कई कहते हैं ये तो जब बूढ़े होंगे ना तभी ये करेंगे, अभी तो खाओ पियो मौज करो, अभी तो जवानी, अभी तो दुनिया देखी कहाँ है, ये तो बुढ़ापे के लिए। पर ये सबके लिए, एवरी वन इन दिस वर्ल्ड कैन प्रैक्टिस राजयोगा, नो मैटर वॉट इज बैकग्राउंड इज। ये तो हिंदुओं के लिए, ये तो फलाने के लिए, इनके लिए नहीं, सबके लिए है, क्योंकि जीवन तो सभी जी रहे हैं ना। ही जस्ट नीड्स टू मेक द चॉइस टू लिसन टू हिज इनर वॉइस। अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। वो आप इसलिए कहते हैं आत्मा सदा शुद्ध है, माना वो अंतरात्मा वास्तव में असली रूप में बहुत शुद्ध है, लेकिन आज हम अपने आप को भूल गए हैं। इसलिए सदियों से यही प्रश्न चला आता है, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, डोंट आई नो माई सेल्फ। अवश्य नहीं जानता हूं, तभी तो बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने आज तक यही कहा, अपने आप को पहचानो। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो के गए हैं, उन्होंने भी यही प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ। सो हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं? हम जो भी अपना परिचय देते हैं ये सब फिजिकल परिचय है, और जो फिजिकल परिचय होता है वो सदा स्थायी नहीं होता है। आज आप बहुत बड़े जज बन गए, मान लो सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन कल आप रिटायर्ड हो गए तो कहेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस या कहेंगे चीफ जस्टिस ब्रैकेट में रिटायर्ड, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। यू कैंट बी दैट ऑल द टाइम, कुछ भी। इसी प्रकार जो चीज परिवर्तनशील है, क्या मैं वो हूं? भगवान के आगे हम जाकर क्या कहते हैं? मैं नीच हूं, पापी हूं, दास हूं, कपटी हूं, गंदा हूं, बंदा हूं, चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, मूर्ख हूं, निर्बल हूं, सारे जो हीन शब्द है ना, वो अपने लिए हम भगवान के आगे जाकर कहते हैं। और दुनिया में कहते हैं, दुनिया में जाकर, मेरे जैसा होशियार कोई नहीं, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। भगवान के आगे जाकर कहेंगे मैं तो पापी हूं। और अगर भूल से किसी और ने हमें कह दिया, चल पापी कहेगा, बस लड़ना चालू करेंगे, पापी कहते हो, मैंने क्या पाप किया, गुस्सा करते हैं ना। पर भगवान के आगे तुम खुद ही कहते हैं अपने आप को, है ना। आरती में आता है, मैं मूर्ख खल कामी पापी कृपा करो भरता। तो भगवान के आगे कुछ और, दुनिया के आगे कुछ और अंदर में कुछ और, तो कौन हूं मैं? इसलिए खुद को पहचानना माना अपने रियल स्वरूप को पहचाना। तो जब हम कहते मनुष्य हूं मैं, चलो और मत सही, मनुष्य हूं, लेकिन मनुष्य का भी मतलब केवल हड्डी मांस का पिंजरा तो नहीं ना। वो डेड बॉडी भी तो मनुष्य का ही रूप है, लेकिन उसको मनुष्य थोड़ी कहेंगे। तो इसलिए मनुष्य अर्थात जिस शरीर के अंदर एक चेतना हो, और वो चेतना है आत्मा, तो वो हूं मैं। अब आत्मा पर भी कितनी रिसर्च करने की कोशिश की है विद्वानों ने, बहुत रिसर्चेस हो गए, लेकिन कोई भी आत्मा को समझ नहीं सका है अभी तक भी नहीं। साइंटिस्ट भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मा क्या चीज है? क्योंकि दोनों को मिला के हम कहेंगे मनुष्य। अब दोनों में से मैं कौन? जब हम ह्यूमन शब्द कहते हैं इंग्लिश में, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस। ह्यूमस माना सॉइल, मिट्टी, ह्यूमस। और सोल जब कहते, बीइंग जब कहते हैं माना वो चेतना। सो व्हाट इज सोल, व्हाट इज चेतना? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी। अब उसको हमें समझना होगा, किसको हम सोल कहते हैं, आत्मा, और क्या अंतर है शरीर और आत्मा में, कैसे इस भेद को समझना है। हमने मिस कर दिया है। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, टैक्सी चाहिए, टैक्सी ड्राइवर है, तो हम भले नाम तो बुलाएंगे, टैक्सी टैक्सी, हाँ करते ना, पर सुनता कौन है? टैक्सी थोड़ी सुनती है, वो तो ड्राइवर सुनेगा। अगर ड्राइवर हो ही नहीं टैक्सी के अंदर, चाहे कितना भी चिल्लाओ टैक्सी टैक्सी, आएगी क्या आपके पास? ड्राइवर सुनता है। तो शरीर भले टैक्सी या कार जो कहो है, पर ड्राइवर तो आत्मा है ना। शरीर एक बॉक्स की तरह है, पर उसमें जो जिसकी वैल्यू है वो है डायमंड, वो हीरे की वैल्यू। चाहे डब्बा डब्बी इतनी सुंदर क्यों ना हो, डायमंड की डिब्बी, लेकिन अगर डायमंड है ही नहीं, उस सुंदर डिब्बी की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। चाहे कितनी भी वैल्यू हो, पर डायमंड है तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो मैं कौन हूं, वो डिब्बी हूं या डायमंड हूं? एक झोपड़ी में दिया जलता है तब उस झोपड़ी की भी वैल्यू है। अब अंधेरा हो झोपड़ी में, चाहे कैसी भी सुंदर झोपड़ी हो, महत्व क्या है? दीवे की का महत्व है। एक मंदिर हो खूबसूरत, बहुत सुंदर मंदिर, ऊंचा ऊंचा, लेकिन मूर्ति है ही नहीं, तो क्या फायदा? एक रथ हो लेकिन रथी उसमें है ही नहीं। एक बहुत सुंदर वस्त्र हो पर वस्त्र धारण करने वाला कोई है ही नहीं, तो उस वस्त्र का भी क्या महत्व होगा। तो इसलिए मैं कौन हूं दोनों के बीच में, ये खुद को निर्णय करना होगा। ये है अपने आप को पहचानना। तो शरीर तो फिजिकल है, ये भौतिक है, पंच तत्वों का बना हुआ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जिससे ये शरीर बना। लेकिन आत्मा तो भौतिक नहीं है, इसलिए आत्मा को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंखें चर्म चक्षु है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक चीज अप्राकृतिक को कैसे देख सकती है? और विज्ञान तो केवल प्राकृतिक चीजों पर ही परीक्षण करता है, जो अप्राकृतिक है उनको तो समझ ही नहीं पाएगा। जो एनर्जीज है वातावरण में, वो भी फिजिकल है, लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी, उसको भी मेजर कर सकते हैं। शरीर में मस्तिष्क में कितने पार्ट्स हैं, लेकिन मन कहाँ है? कोई कहेंगे मस्तिष्क में है। अब कई न्यूरोसर्जन्स जो ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने कहाँ ढूंढा मन का स्थान कहाँ है ब्रेन में, अभी ढूंढ ही रहे हैं। क्योंकि इट्स नॉट फिजिकल कि कोई फिजिकल पार्ट हो, इसीलिए फिजिकल और सोल स्पिरिचुअल, फिजिकल मॉर्टल और वो इमॉर्टल। शरीर को काट सकते, जला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पंच तत्व आपस में हाँ एक दो के विरोधी भी है तो एक दो से मिल भी सकते हैं। आग पानी को खत्म करती है और पानी आग को खत्म करता है, ऐसा ही कहेंगे ना। ये एक दो के विरोधी भी हैं और एक दो से मिलके भी काम करते हैं। लेकिन आत्मा तो इन पांच तत्वों से अलग चीज है, जो न जल सकती न कट सकती न डूब सकती न सूख सकती। फिर शरीर टेम्पररी है, ये शरीर धारण हुआ, गर्भ में पैदा हुआ, चलो जो भी वो बताते हैं जिससे, वो टेम्पररी है, एक दिन मर जाएगा। जहां जन्म है वहां मृत्यु निश्चित है, एज सर्टिन एज डेथ, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हाँ, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, भले फिजिकल लाइफ है, वो लाइफ कहेंगे, ईच सेल हैज लाइफ, बट द लाइफ व्हेन जब हम लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं, चेतना कहते हैं, वो केवल ये फिजिकल एक एक सेल की लाइफ की बात नहीं है। वो तो अजर अमर अविनाशी, ये तो लाइफ खत्म हो जाएगी जो एक एक बॉडी के सेल की लाइफ है। तो ये जो प्रकृति है ये बदलती रहती है, बच्चा जवान बूढ़ा हुआ, लेकिन आत्मा तो न बूढ़ी न जवान होती, वो तो सदा एक रस है। इसलिए आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी, और वो मैं हूं। कई कहते ठीक है हम मानते हैं आत्मा है, हाँ मेरे अंदर एक आत्मा है, ऐसे कह देंगे, आई हैव अ सोल इन मी। अब इज दिस राइट? आई हैव अ सोल इन मी, दैट मीन्स आई एम बॉडी एंड आई हैव अ सोल इन मी विच इज सेपरेट फ्रॉम मी एंड आई एम बॉडी। फिर कई कहते आई हैव अ सोल इन माई बॉडी, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब क्या ये सही है? तो मेरे शरीर में मेरी आत्मा, तो मैं कौन? वही प्रश्न आएगा, मैं और मेरा ना, तो मेरा शरीर मेरा मेरी आत्मा, तो मैं कौन? तो तीसरा स्टेटमेंट है आई एम अ सोल इन माई बॉडी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा बताइए? थर्ड वन, आई एम, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, मेरे शरीर में हूं, अवश्य मेरा यहां, क्योंकि मैंने ही धारण किया है। पर ये शरीर क्या है? मेरा एक वस्त्र है, मेरा एक साधन है, जैसे माइक मेरा साधन है, ताकि इस माइक के द्वारा हाँ आप तक आवाज पहुंचे। लेकिन ये तो मैं नहीं हूं ना, माइक को तो नहीं पता ना क्या बोलना है, इसीलिए साधन इज नॉट साधक, मैं साधक हूं, ये साधन है। वह दोनों को जब हम अंतर दोनों का समझ लेते हैं तो खुद को पहचान लेते हैं। अब मैं आत्मा हूं चलो माना, क्या हूं आत्मा? ज्योति हूं, एक ज्योति। वो ज्योति नहीं जो दिया सलाई से हमने दिया जलाया, वो ज्योति नहीं, वो तो फिजिकल है, वो हवा का झोंका आया बुझ जाएगी, या घृत खत्म हो गया तो बुझ जाएगी, लेकिन मैं वो सदा अजर अमर अविनाशी ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं। हर आत्मा में एक MIS है, जैसे हम कोई कंपनी में MIS कहते हैं ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट वो कंपनी का मैनेजमेंट, उसका इंफॉर्मेशन आपस में वो सिस्टम बनता होता है, तो ये आत्मा में भी एक MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, माना माइंड इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियसनेस, इसको हम MIS कहेंगे। तो सबकॉन्शियसनेस किसको कहेंगे? वो अंदर में आपके संस्कार, तो मन बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की शक्ति है, ये बाह्य चीज नहीं है। मन का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है, संस्कार या पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, या सबकॉन्शियसनेस कहते हैं, अब उसको समझना होगा। व्हाट इज थॉट पावर, जिसको मेंटल पावर कहेंगे। माइंड क्या है, जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो अनुभव करता है, जो विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है, संकल्पना करता है, आइडियाज बनाता है, ये सब मन का काम है। आप कहेंगे ये मस्तिष्क का काम है, अब मस्तिष्क भी साधन है, ब्रेन ऑल्सो इज ओनली फिजिकल। कंप्यूटर आपका बहुत पावरफुल है, तो ब्रेन कैन बी पावरफुल, बहुत कंप्यूटर पावरफुल है, बहुत मेमोरी है, लेकिन उसमें बिजली चाहिए ना, शक्ति तो चाहिए ना। तो ब्रेन इज ओके, ब्रेन में आपका वो मेमोरी पावर बहुत अच्छा होगा, परंतु कौन मेमोराइज कर रहा है, कौन उसको अनुभव कर रहा है, वो मालिक कौन है? वो तो मैं आत्मा हूं ना, उसको किसने फीड किया है? कंप्यूटर ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा ना, उसको फीडिंग की है, उसका अंदर सॉफ्टवेयर डाला है, उसका हार्डवेयर है, वो बिगड़ सकता है, फिर चेंज कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, पूर्व जन्म का सॉफ्टवेयर है, कई ऐसे जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, कईयों को फ्यूचर की बातें याद आ जाती है, वो सॉफ्टवेयर कहाँ है इस ब्रेन में? वो तो है ही नहीं ना, तो ये उससे भी ऊंचा है। इसीलिए इट इज द ग्रेटेस्ट बट लीस्ट अंडरस्टूड एनर्जी रिसोर्स ऑफ द यूनिवर्स। व्हेन वी अंडरस्टैंड हार्नेस दिस एनर्जी, देन वी कैन मास्टर आर लाइफ। जैसे हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये एनर्जीज को पहचान चुके हैं, ये फिजिकल एनर्जीज है, लेकिन क्या हमने थॉट एनर्जी को भी पहचाना है? आज हम पोल्यूशन की बातें करते हैं, कितने प्रकार का पोल्यूशन है ना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, पोल्यूशन, लेकिन व्हाट अबाउट माइंड पोल्यूशन? कभी वो सोचा है, मन में कितना प्रदूषण है, कितनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जिसके कारण सारा वातावरण ऐसा नेगेटिव बन जाता है। आप यहां आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप कहेंगे यहां बहुत शांति है, लग रहा है ना, अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो कहते हो रहा है हाथ उठाएं, हाँ, तो अब कैसे लगा है? शांति क्या है, कोई चार दीवारें शांति दे रही है क्या? वो तो आपको कई जगह मिलेगी, लेकिन वो शांति का माहौल किस आधार पर है? यहां की सोच जो हम सब में है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है, इसी से अनुभव होता है। आप एक शमशान घाट में चले जाइए, वहां भी बिल्कुल साइलेंस है, कोई नहीं होगा शमशान घाट में, कोई डेड बॉडी नहीं जल रही है, कोई है भी नहीं, कोई पक्षी भी नहीं उड़ रहा है, पर आपको वहां शांति मिलेगी। क्या समझते हैं? अनुभव होगी भाई, चलो चलो यहां के आप खड़ा होना है। पर एक मंदिर में जाइए जहां आवाज है, ढोल बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, श्लोक उच्चारण हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहां इतना आवाज होते हुए भी आपको शांति अनुभव होती है। क्यों? कहिए कि हट जाओ जब बहुत आवाज है यहां। नहीं, वहां शांति अनुभव होगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस जो लोगों के है ना, वो बड़े पीसफुल है, वहां मन की शांति के लिए जाते हैं। इसीलिए हमको समझना है कि मन क्या चीज है, फिर बुद्धि क्या चीज है, जो इवैल्यूएट करती है, जो रीजनिंग करती है, डिसर्न करती है, डिसाइड करती है, अंडरस्टैंड करती है, एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। नहीं, यहां ये बुद्धि का काम है। जैसे छलनी होती है ना, जो नहीं चाहिए वो परे जाएगा, और जो चाय है, जैसे आप चाय छानते हैं तो काम की चीज आपको कप में मिल गई, और जो फेंकने की चीज है वो आपकी छानी में रह गई, छलनी में रह गई। सो व्हाट इज इंटेलेक्ट? इट अंडरस्टैंड्स, इट इवैल्यूएट्स, वो बुद्धि है, जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। ये भी आत्मा की चीज है, इसकी कंपैरिजन एक तराजू से भी कर सकते हैं। तराजू में तीन चीजें होती है, द नीडल इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो नीडल परमात्मा की तरफ हो, बुद्धि योग, बुद्धि ईश्वर की तरफ हो, द रॉड इज ऑफ अनबायस्ड एटीट्यूड, एक जज जो निर्णय देगा, अनबायस्ड होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, एंड द वेट ऑफ वैल्यूज इन लाइफ, द वेट्स आर वैल्यूज इन लाइफ, एक साइड में वजन है और दूसरी साइड में वो चीज जो हम वजन कर रहे हैं। तो क्या वजन करना है? आपकी बुद्धि समझ जो है वो यही निर्णय दे, विजडम क्या है, इट इज द इनर वॉइस, वो ही, उसी को महत्व देना है, और वो आत्मा की शुद्धि है। अब उसको जब हम समझते हैं तो फिर संस्कार क्या है, इट इज योर हैबिट्स, योर टेंडेंसीज, योर मेमोरीज, योर टैलेंट्स, योर क्वालिटीज। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, मरता है, तो हम क्या कहते हैं, अपने कर्म लेकर गया। वो कर्म किस रूप में गए? कर्म तो मोटा रूप है जो हम शरीर से करते हैं, पर वो कर्म किस रूप में गए? आपकी जो आदतें हैं, आपकी टेंडेंसीज है, आपकी मेमोरीज है, ये सब क्वालिटीज है, जो सब कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा गई। और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया है। तो आया तो भाग्य लेकर आया, और गया तो कर्म लेकर गया। वास्तव में है तो वही चीज, वो कर्म संस्कार के रूप में लेकर गया, और वही संस्कार भाग्य के रूप में उसके पास साथ आए नए जन्म में। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की तीन शक्तियां हैं। इन शक्तियों को पहचानना है। कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने टैलेंटेड है आजकल के बच्चे, कल आप लोगों ने देखा होगा छोटा सा बच्चा, हाँ, कैसे, कितनी उसमें जादूगरी, हाथ की सफाई, अब छोटे बच्चे में कहाँ से आ गए? देखा किसने? देखा कल? देखा थोड़ा? हाँ, तो देखो कितने अवार्ड लिए हैं। अब इसने उसको किसने सिखाया होगा? ये इनबॉर्न कैसे हुआ? वो सब कॉन्शियसनेस में आ गया पूर्व जन्म से। ये आत्मा की शक्ति है, ये शरीर की शक्ति नहीं है, ये केवल ब्रेन की शक्ति नहीं है। फिर कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव है कईयों का। एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट का मान लो और अचानक हार्ट बीट बंद और वो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है अपने शरीर को ऊपर से और सोच भी रहा है, देख भी रहा है, उसके अंदर में प्रेम उभर रहा है अपने रिलेशनशिप रिलेटिव्स के लिए, वो बाहर बैठे हैं इंतजार में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो बाहर भी घूम के आ रहा है तो बॉडी भी देख रहा है, सोच भी रहा है, प्रेम भी अनुभव कर रहा है। वो कौन कर रहा है? शरीर तो मुर्दा पड़ा है, वो तो पथरा गया, फिर अचानक जाग जाता है। अचानक जाग गया मानो जो भी अगर रुक गया फिर उसको चिकेट किया या जो कुछ और जाग गया तो कहता मैं अपना शरीर ऊपर से देख रहा था। कैसे देख रहा था? कौन सी आंख देख रही थी? आंखें तो शरीर में थी लेकिन मन भी एक आंख है। मन, आप यहां बैठे मन की आंख से कहां कहां देख सकते हो। फिर बुद्धि है, वो बुद्धि जो आत्मा की शक्ति है वो अनुभव करती है, वो कान है, वो सुनती भी है, डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं वो भी सुन रहा है और कान तो पथरा गए हैं पर सुनता है, वो देखता है, अनुभव भी करता है, वो संस्कार अनुभव करते हैं। अब ये आत्मा की शक्ति है, पूर्व जन्मों में ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ बॉडी इज हिप्नोटिक रिग्रेशन। हिप्नोसिस के जरिए उनको पूर्व जन्मों में ले जाते हैं। बहुत इसके अनुभव है, बहुत थियरीज इसकी बनी है, इस पर रिसर्च बहुत हो सकी है, फिर भी आत्मा को तो देख नहीं सकते ना। अब ये जब हम अनुभव करते हैं तो फिर प्रश्न उठता है आत्मा कहाँ है शरीर में। आत्मा का स्थान इस शरीर में ये भ्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है, दो बहुओं के बीच का स्थान जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, ये आत्मा का स्थान है। जब कोई हठ योग करते हैं या आसन करते हैं उसके बाद शवासन करते हैं, दैट्स अ लास्ट पोस्चर। शवासन सब इंद्रियों को शिथिल कर देते हैं और शिथिल करके यहां एक्टिवेट करते हैं अपने आज्ञा चक्र को। अब राजयोग में आज्ञा चक्र को एक्टिवेट आरंभ से ही करते, नो नीड टू गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ यू नो शरीर को डेड बनाना या शव बनाना। यहां एक्टिवेट किया और ये राजा आत्मा राजा मालिक बन के इंद्रियों को वश में करें। जैसे ड्राइवर, अब गाड़ी खड़ी है बंद पड़ी है, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, अपनी सीट पर बैठा और चाबी घुमाई, चाहे बटन ही दबाया और जैसे घुमाया बॉडी एक्टिवेट हो गई, वो गाड़ी एक्टिवेट हो गई और वो मालिक बन के कंट्रोलर बन के गाड़ी को चला रहा है। तो शरीर रूपी गाड़ी लेकिन ड्राइवर कौन? आत्मा। तो यहां पर विराजमान मैं आत्मा एक ज्योति प्रकाश का पुंज चमकता हुआ सितारा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक, और मालिक बन करके जैसे गाड़ी चलाने वाला मालिक बन करके गाड़ी को अपने कंट्रोल में रख के चलाता है, तो स्पीड बढ़ाए घटाए ब्रेक लगाए एक्सेलरेटर दबाए, वो मालिक है। तो मैं आत्मा मालिक हूं इस शरीर की इंद्रियों का। और ये जब हम निश्चय करते हैं तो उस स्थान से हम अपनी शक्ति को फिर शरीर में भेजते हैं, फिर चाहो तो वापस अपने आत्मा में, आत्मा वापस आ गई तो जैसे इंद्रियों को अपने वश में किया। मेरे आज्ञा के बिना ये हाथ कुछ काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं कि ये हाथ चल दिया किसको थप्पड़ मार दी और फिर कहेंगे ओह सॉरी मेरे को मारना तो नहीं था, पता नहीं कैसे थप्पड़ मार दिया आपको। अब कैसे थप्पड़ मार दिया? आपका हाथ तो आपका ही है, किसी दूसरे का हाथ थोड़ी है। आप दूसरे को कहेंगे भाई आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारी, पर अपना ही हाथ है और मैंने ही मारी तो हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था क्या? कोई शब्द बोल दिए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, फिर कहेगा सॉरी मेरा मतलब नहीं था, मेरा भाव नहीं था, फिर कितना भी कुछ कह दो तो मुख आपके कंट्रोल में नहीं है क्या कि जो आया बस बोल दिया, फिर सॉरी कह दिया? चलो सॉरी भी कहा, कोई तो सॉरी भी नहीं कहता, चक बोला तो क्या हुआ? अंदर मन भी खाता है तो भी सॉरी भी नहीं करेंगे और ही नशा दिखाएंगे, हाँ हाँ क्या हुआ मैंने बोला तो। तो देखो ये इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है। जब ब्रेक लगानी है, एक्सीलरेटर दबा दो तो क्या हालत हो गया बताइए? दबानी है ब्रेक और दबा दो एक्सीलरेटर, पांव तो नजदीक तो दोनों ही है ना, पांव के नजदीक। गियर भी बदलना होता है, बहुत चीजें होती है, कितना टेंशन रखना पड़ता है ड्राइवर को। और अगर शराब पिया हुआ है तो क्या पता उसको, कोई सुध-बुध नहीं क्या कर देगा। इसलिए ड्रिंक ड्राइव डोंट मिक्स, ड्राइवर हैज टू बी फुली इन कंट्रोल। इसीलिए मैं आत्मा कौन हूं, कैसी हूं, अब लेट अस गो टू अवर ओरिजिनल स्टेज। हर आत्मा अपने असली स्वरूप में ज्ञान स्वरूप है, सबको ज्ञान है, छोटे बच्चे को भी ज्ञान है, छोटा बच्चा भी ज्ञान है, उसको ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। इसका बहुत विस्तार है। हर आत्मा शांत स्वरूप है, इसीलिए शांति हमको बाहर से नहीं चाहिए, पर मन में अगर पवित्र विचार है तो ऑटोमेटिकली शांति है। पवित्रता शांति की जननी है, पवित्र मन पवित्र विचार शांति की माँ है। तो अगर जीवन में शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए, तो मन में पवित्र विचार लाओ। और जहां शांति है वहीं प्रेम है। प्रेम ऐसे ही नहीं, अगर के अंदर में शांति और पवित्रता बिना प्रेम है, वो प्रेम तो नकली प्रेम है, वो तो शारीरिक प्रेम है, वो तो विकार है, वो तो स्वार्थ है। और जहां प्रेम है वहीं सुख है, ये आत्मिक प्रेम है। हर एक आत्मा के प्रति प्रेम है, प्रेम सिखाया नहीं जाता है। कोई कह दे तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, प्यार कोई मांगा जाता है क्या? प्यार तो दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। मांगना माना ये फिजिकल है, और स्पिरिचुअल तो मांगा नहीं जाता। हर बच्चे के अंदर कितना प्यार होता है, कैसे दो बच्चे आपस में कितना प्यार करते हैं देखते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, किसको सिखाया थोड़ी। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। और जहां ये सारे गुण है ना, वहां आनंद स्वरूप है। आनंद, आनंद ब्लिस जिसको कहते हैं, ये कितना ऊंचा स्वरूप है। हर एक गुण का आनंद होता है, शांतानंद शांति का भी एक आनंद है, प्रेम आनंद प्रेम का भी आनंद है, सत्यता का भी आनंद है सत्यानंद, धर्मानंद, और सबसे ऊंचा आनंद है परमानंद, परमात्मा का आनंद। इनसे ऊंचा कोई आनंद होगा क्या? परमानंद, सत चित आनंद। ये आनंद शब्द संतों के नाम में आता है, वो लास्ट होता है जिसके आधार से आनंद मिला। आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, विरुद्ध शब्द नहीं है। हर गुण का विरुद्ध शब्द भी है, अपवित्रता अज्ञान अशांति नफरत दुख, पर आनंद का ऑपोजिट शब्द नहीं है, ये तो स्पिरिचुअल वर्ड है। और जहां आनंद है वहीं पावर है, शक्ति है, मनोबल जिसको हम कहते हैं विल पावर, आत्मा की शक्ति। और जहां ये सारे गुण है तो मानो हम ऐसे फरिश्ता बन जाते हैं, जैसे फरिश्ते उड़ते हैं ना, आत्मा भी की भी ऐसे हल्कापन उड़ती कला का अनुभव आत्मा कर सकती है। और जब ये सब बातें हो तब हम महसूस करते हैं कि हमको कुछ भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास ही है। अब अंदर में निरीक्षण करो, इसलिए जब हम ओम शब्द कहते हैं, ओम शब्द के अंदर तीन अक्षर है, अ ओम, दैट इज मी. नाउ व्हाट इज दैट विच इज मी? ओम शांति. आई एम अ पीसफुल सोल. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. तो जब मैंने अपने आप को पहचाना, मेरा स्वरूप शांत है, तो मैं कहाँ की वासी हूं? इस संसार में तो मेहमान हूं. ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, ये शरीर का घर जरूर है ये संसार, क्योंकि पांच तत्वों का शरीर है, पांच तत्वों की ये दुनिया है. लेकिन आत्मा तो पांच तत्वों से बनी हुई नहीं है. आत्मा तो ना बनती है, ना बिगड़ती है, ना घटती है, ना सूखती है. तो मैं आत्मा कहाँ की रहवासी हूं? इटर्नल हूं, इमॉर्टल हूं, इम्पेरिशिबल हूं, इंडिविजिबल हूं, इनविजिबल हूं. वास्तव में आत्मा शब्द से ही एटम शब्द आया है. एटम, पहले यही सोचते कि एटम माना वो द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, उसको एटम कहा. फिर बाद में फिर खोज हुई कि नहीं, एटम को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. लेकिन पहले तो यही था ना कि आत्मा, जैसे आत्मा कटती नहीं, घटती नहीं, सूखती नहीं, तो एटम भी इनडिविजिबल है. तो आत्मा तो इनडिविजिबल है ही, तो वो मैं आत्मा हूं, तो मैं कहां की रहवासी हूं? बुद्धि जाती ऊपर, हे भगवान बस मुझे उठा लो इस दुनिया से, नहीं जीना है. तो कहां जाना चाहती आत्मा? नहीं जीना इस दुनिया में, मुझे उठा लो भगवान. तो जरूर आत्मा का कोई अलग घर होगा ना, जहां से आत्मा आई है. फिर भगवान को पुकारते, हे भगवान तो आकाश सिंहासन छोड़ के आओ इस धरती पर, बहुत पाप बढ़ गया है. तो कहां से भगवान भी आते हैं? उनका वायदा भी है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती तब तब मैं आता हूं. तो कहां से आते हैं? अवश्य कोई स्थान है, आत्माओं का भी स्थान है, जो पांच तत्वों से परे एक अखंड ज्योति का महतत्व है, जिसको शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, परलोक, निर्वाण धाम आदि नामों से पहचानते हैं. वो अखंड ज्योति का तत्व, इसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, ब्रह्म महतत्व. और मैं आत्मा उस ब्रह्म तत्व की रहवासी हूं, जिसका साक्षात्कार अनेक योगियों ने किया है. तो मन को बुद्धि के साथ, बुद्धि सहित, मन बुद्धि के जैसे पंख आत्मा को मिल जाते और आत्मा मन बुद्धि से सहज उस धाम में पहुंच जाए, पांच तत्वों से पार उस अखंड ज्योति के महतत्व में. और क्या महसूस करे? कि मैं वो आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं. तो आत्मा, सोल, स्पिरिट, ये उसका कहेंगे, इनकी पूजा भी होती है, आत्मा की पूजा शालिग्राम के नाम से, विष्णु के मंदिरों में, श्री राम के मंदिरों में शालिग्राम होते हैं, वो आत्मा की निशानी है. तो आत्मा क्या है? एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है. और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का स्वरूप है. इस शरीर में कहाँ है? या भ्रकुटी के मध्य. ये उसकी टेम्पररी एड्रेस है. और परमानेंट एड्रेस पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व. अपने परिचय पत्र आप भरते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, यू हैव टू फिल इन योर फॉर्म. तो फॉर्म में ये सब पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, टेम्पररी एड्रेस, क्योंकि कई बदलते रहते हैं तो उनकी टेम्पररी एड्रेस भी होती है, तो परमानेंट एड्रेस भी होती है. फिर उनका ऑक्यूपेशन पूछते हैं, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन. तो आत्मा का भी ये ऑक्यूपेशन है. कौन सा व्यवसाय आत्मा का? एक एक्टर. एक्टर भी ऑक्यूपेशन है ना. तो एक्टर बनकर के इस सृष्टि मंच पर आकर अभिनय करना, और अभिनय के लिए अलग अलग देह रूपी वस्त्र है. तो इसीलिए ओरिजिनल आइडेंटिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रोल. एक एक्टर की जो आइडेंटिटी होती है वो उसके रोल से तो बहुत अलग होती है. आइडेंटिटी में वो कितना अच्छा व्यक्ति होगा लेकिन रोल में उसको विलियन का रोल मिलता है. अब इतना बुरा रोल उसको मिलता है लेकिन वो वास्तव में ऐसा है नहीं. तो हम भी जो कर्म करते वास्तव में हम ऐसे हैं नहीं, इसीलिए मन खाता है. इसलिए कई लोग कहते हैं भी हमको ये रोल करना ही नहीं है, अगर अच्छा रोल मिलेगा तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, है ना. और कई तो तैयार होते पैसा लेने के लिए, क्या नहीं होता. तो मैं आत्मा वास्तव में क्या हूं उसको पहचानो. सो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिकर, टू ड्रॉ आउट समथिंग फ्रॉम विद इन. सो मेडिटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन. ईच वन इज परफेक्ट विद इन. इसीलिए कई कहते हैं ना आत्मा तो सदा ही शुद्ध है. तो आत्मा सदा ही शुद्ध है ये कहना वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा ही पाप आत्मा भी बनती है, पुण्य आत्मा भी बनती है, धर्म आत्मा भी बनती है, तो देव आत्मा भी बनती है, लेकिन परमात्मा नहीं बनती है. परमात्मा वो सदा ही परम है. अब उसको फिर कल आपको बताया जाएगा परमात्मा किसको कहेंगे. पर व्हाट इज मेडिटेशन? द फर्स्ट स्टेप इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन. आप हर एक आत्मा रूप में परफेक्ट हो, लेकिन वो परफेक्शन हम भूल गए हैं. अब उसको उजागर करो, जगाओ. सोई हुई है शक्ति आपके अंदर, जगाओ. जैसे हनुमान के लिए दिखाते ना, उसके पास बहुत शक्ति थी लेकिन जब तक उसको कोई याद न दिलाए तब तक वो शक्ति प्रकट नहीं होती थी. और जब उसको याद दिलाए, अरे हनुमान तुम तो ये सागर पार कर सकते हो, पहले सोचा कैसे कैसे, फिर जैसे कहा जय श्री राम, आ गई शक्ति का संचार हो गया. अंदर से जाग गई शक्ति जय श्री राम का. होते ना इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वो तार का रबर हटाया, जैसे हटाया करंट से वो कनेक्शन किया, स्पार्क हुई. तो ये भी ऐसे ही है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हुआ और वो शक्ति का संचार जो अंतर में है वो जाग गया. इसीलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन. इसलिए जैसे सेल्फ को पहचाना कि मैं तो वो शांत स्वरूप आत्मा हूं, उस शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, मेरा धाम शांति का धाम है, फिर भी अगर मैं कहती हूं मैं तो अशांत हूं तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञान. अब इस अज्ञान को खत्म करो. कहां से शांति लाएंगे? कहीं बाहर से नहीं लाएंगे, आपके पास ही है. और जगाओ, उसको जगाना ही मेडिटेशन है. तो चलिए अभी हम इसका अभ्यास करेंगे. तो पहले क्या करेंगे अभ्यास? अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे, अपने अंदर में अपने से बातें करें, खुद से बातें करें, अपने आप से पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और खुद को ही जवाब दे, न मैं ये शरीर हूं, न मैं ये शरीर हूं और न मैं ये रोल हूं. कोई भी रोल आप बजा रहे हो, मैं वो भी नहीं हूं और शरीर भी नहीं हूं. मैं तो एक एक्टर हूं इस सृष्टि मंच पर. और दूसरा, आई डिटैच एंड ऑब्जर्व माई बॉडी एंड द सीन्स हैपनिंग अराउंड मी. सामने को आप हमें देख रहे हैं लेकिन ये भी एक आत्मा है जो अपनी भ्रकुटी में विराजमान है और इन आंखों से देख रही है, मुख से बोल रही है, हाथों से काम कर रही है, तो मैं भी वो एक आत्मा हूं, मेरा मूल स्वभाव शांति है। तो अगर मन में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, एक सेकंड में ब्रेक लगाओ, ये मैं नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। फिर पहचानो अपने असली स्वरूप को और उसी रूप में स्थित हो जाओ। तो चलिए हम महसूस करेंगे मैं कौन हूं। सीधा बैठेंगे, रिलैक्स्ड भी रहें और अपने साथ फर्म भी रहें, स्ट्रिक्ट भी रहें, और मन से जो भी कुछ और बातें याद है वो एक सेकंड में ब्रेक लगा दो। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? स्वयं को स्वयं ही उत्तर दे, मैं एक आत्मा हूं। एक ज्योति हूं। प्रकाश का पुंज हूं। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ एक सितारा हूं। प्रकृति के मध्य विराजमान होकर अपने आप को इंद्रियों से न्यारा बनाए, मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। ये पंच इंद्रियां मेरे वश में है। ये शरीर एक वस्त्र के समान है। जैसे वस्त्र अगर ढीला है तो धारण करने वाला भी सहज अनुभव करेगा खुद को, तो शरीर रूपी वस्त्र को भी ढीला करें। ये अलग है मुझसे, मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए हैं। कितने देह रूपी वस्त्र त्यागे हैं, अब मुझे इस देह रूपी वस्त्र को भी बुद्धि से भुलाकर वापिस अपने धाम जाना है। जो पांच तत्वों से परे अखंड ज्योति का महतत्व है, मैं आत्मा इसी धाम की रहवासी हूं। मन की आंख आत्मा के धाम को देखिए। जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, और मैं आत्मा इस बेहद धाम में, इस अखंड ज्योति के महतत्व में एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। मेरा मूल स्वभाव शांति है। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरा धाम शांति का धाम है। इस सृष्टि मंच पर तो मैं केवल मेहमान हूं, मन बुद्धि रूपी पंखों से मैं एक सेकंड में उड़कर उस धाम में पहुंच सकती हूं। यहां तो असीम शांति ही शांति है। एकदम निरसंकल्पता है। वो शांति की शक्ति, मैं आत्मा स्वयं में महसूस कर रही हूं। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन, मैं आत्मा खुद को पहचान चुकी हूं। अब इसी शांति की शक्ति को स्वयं में समाकर वापस लौटे, फिर से इस सृष्टि मंच पर अपने साकारी शरीर में और कर्म योगी की भांति कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रहे। यही राजयोग का लक्ष्य है। ओम शांति शांति। Yeah.